एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो गुलामी के अंधेरों से निकलकर राष्ट्रीय पहचान के शिखर तक पहुंचती है।
हाँ, एक असाधारण कहानी।
हम बात कर रहे हैं बुकर टी वॉशिंगटन और उनकी 1901 में प्रकाशित आत्मकथा अप फ्रॉम स्लेवरी की, मतलब गुलामी से ऊपर उठना।
बिल्कुल, और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अमेरिकन इतिहास खासतौर पर नस्लीय संबंधों के जटिलताओं को समझने की, कह सकते हैं, कुंजी है।
बिल्कुल, बुकर टालियाफेरो वॉशिंगटन, जिनका जीवन काल लगभग 1856 से 1915 तक रहा।
हाँ, वे एक शिक्षक थे, लेखक, एक जबरदस्त वक्ता और टुस्कीगी इंस्टीट्यूट के संस्थापक, और शायद अपने समय के सबसे प्रभावशाली अफ्रीकी अमेरिकी नेता भी।
उनकी कहानी सिर्फ कोई गुजरे जमाने का दस्तावेज नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये असल में दृढ़ता की कहानी है, शिक्षा की शक्ति की और सामाजिक परिवर्तन की अलग अलग रणनीतियों पर एक गहरी सोच भी है इसमें। मुझे लगता है आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है।
जरा सोचिए, वर्जीनिया के एक बागान में गुलामी में जन्म लेना, जहां मतलब अपना नाम तक नहीं था शुरू में।
हाँ बिल्कुल,
और वहां से व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के साथ भोजन करने तक का सफर।
ये सुनने में तो किसी अमेरिकी सपने जैसा लगता है, पर इसकी राह वो बेहद चुनौतीपूर्ण थी और विरोधाभासों से भी भरी हुई।
तो चलिए, आज इस ज्ञान गोष्ठी में हम बुकर टी वॉशिंगटन के जीवन और उनके विचारों की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी कहानी की शुरुआत होती है, जैसा आपने कहा, लगभग 1856 में वर्जीनिया के एक बागान में, गुलामी की कठोर सच्चाई के बीच।
हाँ, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, एक कमरे की लकड़े की कैबिन थी, मिट्टी का फर्श था, सोने के लिए छितड़े थे बस।
बचपन की यादें भी भूख और एक तरह की अनिश्चितता से भरी हुई थीं।
बिल्कुल, उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे बच्चों को कई बार जानवरों की तरह खिलाया जाता था, बस एक सांझे बर्तन से। लेकिन उसी अंधेरे में आप कह सकते हैं ज्ञान की एक चिंगारी भी थी।
अच्छा, वो कैसे?
जब उन्होंने अपनी मालकिन की बेटियों को पढ़ते हुए देखा, तो वो अक्षरों की दुनिया का जादू वो उन्हें खींचने लगा। उन्हें शायद तभी यह एहसास हो गया था कि पढ़ना लिखना ही गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति का एक रास्ता हो सकता है।
तो ये ज्ञान की भूख शुरू से ही थी।
हाँ, ये भूख उनके पूरे जीवन की प्रेरणा बनी रही।
फिर 1865 में मुक्ति की घोषणा हुई। वॉशिंगटन लिखते हैं कि उस पल में कोई बहुत ज्यादा जश्न या खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी, भविष्य की चिंता थी।
सही बात है, आजादी तो मिल गई, पर अब आगे क्या? शून्य से जीवन कैसे बनाना है, ये बहुत बड़ा सवाल था सबके सामने। और इसी दौर में उन्हें अपना पूरा नाम मिला, बुकर टालेफेरो वॉशिंगटन।
उनका परिवार फिर बेहतर जीवन की तलाश में सैकड़ों मील पैदल चलकर वेस्ट वर्जीनिया के माल्डन पहुंचा।
हाँ, और वहां सिर्फ 9 साल की उम्र में बुकर को नमक की भट्टियों और कोयला खदानों में बहुत खतरनाक काम करना पड़ा। सोचिए, इतनी कम उम्र में।
दिन भर की इतनी कड़ी मेहनत के बाद रात में वो एक पुरानी स्पेलिंग बुक से अक्षर सीखते थे, वो भी अक्सर भट्टी की टिमटिमाती रोशनी में।
कमाल की लगन थी।
यहीं उनकी मुलाकात हुई श्रीमती वियोला रफनर से। ये खान मालिक की पत्नी थीं जिनके घर वो काम करते थे।
हाँ, उनका जिक्र आता है किताब में।
हाँ, वो काफी सख्त मिजाज थीं।
हाँ, लेकिन उन्होंने ही बुकर को अनुशासन सिखाया, सफाई, ईमानदारी और सबसे बढ़कर अपने काम में गर्व करना सिखाया। ये एक बहुत बड़ा सबक था उनके लिए।
बिल्कुल, और ये उनके जीवन का आधार बन गया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर उसे पूरी लगन और मतलब उत्कृष्टता से किया जाए।
और शायद यहीं से वो श्रम की गरिमा वाला विचार उनके मन में बैठ गया होगा। हाँ बिल्कुल, ये बाद में उनके शैक्षिक दर्शन का एक अहम हिस्सा बना। फिर उन्हें वर्जीनिया के हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला। ये अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए एक स्कूल था,
और ये उनके लिए एक बड़ा सपना बन गया,
एक बहुत बड़ा सपना।
और इस सपने को पूरा करने के लिए 1872 में, जब वो सिर्फ 16 साल के थे, उन्होंने लगभग 500 मील की यात्रा शुरू की।
बिना पैसों के?
हाँ, पैसे थे ही नहीं, तो पैदल चले, गाड़ियों से लिफ्ट ली, रास्ते में छोटे मोटे काम किए। रिचमंड शहर पहुंचते पहुंचते तो पैसे बिल्कुल खत्म हो गए।
बहुत कठिन सफर था, उन्हें कई रातें सड़क किनारे लकड़ी के फुटपाथ के नीचे सोकर गुजारनी पड़ी, और दिन में डॉक पर जहाजों से माल उतारकर पेट भरने लायक कमाते थे।
जरा सोचिए उस किशोर की हिम्मत और लगन अविश्वसनीय।
जब वो आखिरकार हैम्पटन पहुंचे मैले कुचेले कपड़ों में बिना एक पैसे के, तो स्कूल की जो मुख्य शिक्षिका थी मिस मैरी एफ मैकी, उन्हें थोड़ा शक हुआ इनकी काबिलियत पर।
अच्छा,
तो दाखिले का फैसला करने से पहले उन्होंने बुकर को एक क्लासरूम की सफाई का काम सौंपा। ये एक तरह की परीक्षा थी
और ये उनके जीवन का पहला बड़ा कह सकते हैं निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसे झाड़ू परीक्षण या स्वीपिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है।
हाँ, और बुकर ने इस काम को पूरी गंभीरता से लिया। ऐसा नहीं कि बस झाड़ू लगा दी,
उन्होंने कमरे में 3 बार झाड़ू लगाई, 4 बार डस्टिंग की, हर कोना चमका दिया।
बिल्कुल, और मिस मैकी उनके काम की बारीकी, उनकी मेहनत और उसमें जो गर्व झलक रहा था उससे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने तुरंत कहा, मुझे लगता है कि तुम इस संस्थान में प्रवेश के लायक हो।
ये सिर्फ दाखिले की कहानी नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने वॉशिंगटन के इस यकीन को पक्का कर दिया कि मेहनत, चरित्र और किसी भी काम को उत्कृष्टता से करने की क्षमता, यही अवसर के दरवाजे खोलती हैं, आपकी पृष्ठभूमि चाहे कुछ भी हो।
हैम्पटन में फिर उन्हें जनरल सैमुअल सी आर्मस्ट्रांग जैसे गुरु मिले। उन्होंने ही औद्योगिक शिक्षा के विचार को बढ़ावा दिया था।
हाँ, जनरल आर्मस्ट्रांग, उनका उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा।
ये औद्योगिक शिक्षा क्या थी, मतलब इसका क्या अर्थ था उस समय?
देखिए, इसका मतलब था अकादमिक विषयों के साथ साथ व्यावहारिक कौशल सिखाना, जैसे खेती, बड़ाईगिरी, ईंट बनाना, सिलाई वगैरह।
अच्छा, मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं।
बिल्कुल, जनरल आर्मस्ट्रांग और बाद में वॉशिंगटन दोनों का ये मानना था कि अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने और समाज में सम्मान पाने के लिए हुनरमंद होना बहुत जरूरी है। सिर्फ किताबें पढ़ने से काम नहीं चलेगा,
और इसमें चरित्र निर्माण, अनुशासन, स्वच्छता, इन सब पर भी जोर था।
हाँ, बहुत ज्यादा जोर था। वॉशिंगटन ने हैम्पटन में चौकीदार का काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला और इन सारे मूल्यों को पूरी तरह से अपनाया।
उन्होंने यहाँ रोज नहाना और टूथब्रश इस्तेमाल करना जैसी आदतें भी सीखी, जो शायद उस समय और उन परिस्थितियों में बहुत बड़ी बात रही होगी।
निश्चित रूप से, ग्रेजुएशन के बाद वो माल्टन लौटे और वहाँ शिक्षक बने। दिन में बच्चों को पढ़ाते थे, रात में वयस्कों को।
कुछ समय के लिए वो पारंपरिक शिक्षा लेने वॉशिंगटन डीसी भी गए थे।
हाँ, गए थे, लेकिन वहाँ की जो किताबी पढ़ाई थी उससे उनका मोहभंग हो गया। उन्हें लगा कि ये उनके लोगों की जो ज़मीनी ज़रूरतें हैं उनसे कटी हुई हैं, तो वो जल्द ही एक प्रशिक्षक के रूप में हैम्पटन लौट आए।
और फिर आया 1881 का साल, तब वो महज 25 साल के थे और उनके जीवन का दूसरा बड़ा मोड़ आया।
बिल्कुल, अलबामा राज्य के टस्कीगी शहर से एक चिट्ठी आई।
क्या था उस चिट्ठी में?
वहाँ के अश्वेत समुदाय के लिए एक स्कूल शुरू करने का न्योता था और जनरल आर्मस्ट्रांग ने इस काम के लिए बुकर टी वॉशिंगटन का नाम सुझाया था।
ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और चुनौती भी।
बहुत बड़ी चुनौती। राज्य सरकार ने शिक्षकों के वेतन के लिए सालाना $2,000 देने का वादा तो किया था, लेकिन स्कूल के लिए न कोई जमीन थी, न कोई इमारत, कुछ भी नहीं था।
वॉशिंगटन के पास तो हैम्पटन में एक सुरक्षित नौकरी थी।
हाँ, थी, लेकिन उन्होंने इस अज्ञात भविष्य वाली चुनौती को स्वीकार किया। ये दिखाता है कि उनमें एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए जोखिम उठाने का कितना साहस था।
टस्केगी पहुंचकर उन्होंने देखा होगा कि हालात तो उम्मीद से भी ज्यादा खराब थे।
बिल्कुल, पहली कक्षाएं एक पुरानी टूटी फूटी सी चर्च और एक झोपड़ी में शुरू हुई, लेकिन वॉशिंगटन निराश नहीं हुए। उन्होंने एक पुरानी बंजर पड़ी बागान की जमीन खरीदी
और फिर छात्रों के साथ मिलकर खुद ही स्कूल बनाना शुरू कर दिया।
यही तो कमाल की बात है। ये उनके व्यवहारिक शिक्षा और श्रम की गरिमा वाले दर्शन का जीता जागता उदाहरण था। छात्र पढ़ाई तो करते ही थे, साथ में जमीन साफ करते, फसलें उगाते, फर्नीचर बनाते और सबसे जरूरी, ईंटें बनाते थे।
ईंटें बनाना स्कूल के लिए?
हाँ, शुरुआती कोशिशें नाकाम रहीं, ईंटें ठीक नहीं बनी, लेकिन वॉशिंगटन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बेशकीमती घड़ी गिरवी रखकर एक नया बेहतर भट्टा बनवाया और आखिरकार वो सफल हुए।
ये तो अद्भुत है। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे कड़ी मेहनत और लगन से शून्य से भी मूल्य का निर्माण किया जा सकता है।
सही कहा। टस्कीगी इंस्टीट्यूट धीरे धीरे वॉशिंगटन के नेतृत्व और उनकी जबरदस्त फंडरेजिंग की बदौलत बढ़ने लगा। उन्होंने एंड्रू कार्नेगी और जॉन डी रॉकफेलर जैसे उस जमाने के बड़े उद्योगपतियों से भी दान हासिल किया।
तो टस्कीगी सिर्फ एक स्कूल नहीं रहा?
नहीं, वो आत्मनिर्भरता और सामुदायिक विकास का एक मॉडल बन गया।
और फिर आया 1895 का साल और वॉशिंगटन के जीवन का तीसरा और शायद सबसे ज्यादा चर्चित निर्णायक मोड़, अटलांटा समझौता भाषण।
हाँ, अटलांटा कॉटन स्टेट्स एक्सपोजिशन। एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी थी अटलांटा में, जिसमें दक्षिण के श्वेत और अश्वेत दोनों समुदायों के लोग शामिल थे और वॉशिंगटन को वहां बोलने के लिए बुलाया गया था।
उस भाषण में ऐसा क्या था जो वो इतना महत्वपूर्ण बन गया और इतना विवादास्पद भी?
उन्होंने एक बहुत मशहूर मुहावरा इस्तेमाल किया, अपनी बाल्टी वहीं डालो जहां तुम हो, कास्ट डाउन योर बकेट वे यू आर।
इसका क्या मतलब था?
इसका मतलब था कि अफ्रीकी अमेरिकियों को फिलहाल राजनीतिक अधिकारों या सामाजिक बराबरी के लिए तुरंत संघर्ष करने के बजाय जहां वो हैं वहीं रहकर आर्थिक उन्नति पर, शिक्षा पर, कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए।
और उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक मामलों में दोनों नस्लें उंगलियों की तरह अलग रह सकती हैं, लेकिन आपसी प्रगति के लिए हाथ की तरह एक होकर काम कर सकती हैं।
हाँ, बिल्कुल यही कहा।
ये तो उस समय के नस्ली अलगाव मतलब सेग्रीगेशन को एक तरह से स्वीकार करने जैसा लगता है।
हाँ, और इसीलिए ये भाषण बहुत ज्यादा विवादास्पद हुआ। कई अश्वेत नेताओं ने, जैसे कि W.E.B. Du Bois ने, इसकी बहुत तीखी आलोचना की।
उनका क्या कहना था?
उनका मानना था कि वॉशिंगटन नागरिक अधिकारों की लड़ाई से पीछे हट रहे हैं, वो नस्लीय अन्याय को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अगर वॉशिंगटन के नजरिए से देखें तो ये उस समय के जिम क्रो साउथ के बेहद हिंसक और दमनकारी माहौल में एक व्यावहारिक रणनीति थी।
मतलब एक सोची समझी चाल।
हाँ, उनका मानना था कि आर्थिक शक्ति और सम्मान हासिल करने के बाद नागरिक अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। ये समर्पण नहीं था बल्कि एक लंबी अवधि की सोची समझी गणना थी। हाँ, रिस्की जरूर थी।
इस भाषण ने वॉशिंगटन को रातों रात राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। वो अश्वेत समुदाय के सबसे प्रमुख नेता और प्रवक्ता बन गए।
बिल्कुल, और 1901 में राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने उन्हें व्हाइट हाउस में डिनर पर बुलाया। ये उस समय एक अभूतपूर्व घटना थी।
हाँ, जिसने श्वेत दक्षिण पंथियों में काफी गुस्सा भी पैदा किया था। उन्हें हार्वर्ड और डार्टमाउथ जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों से मानद उपाधियां भी मिली।
उनके जीवन के अंत तक 1915 में जब उनकी मृत्यु हुई, टस्कीगी इंस्टीट्यूट एक विशाल संस्थान बन चुका था। उसमें 1500 से ज्यादा छात्र थे, 200 शिक्षक थे।
उन्होंने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन को सेवा के प्रति समर्पित बताया और अमेरिका के भविष्य के लिए एक उम्मीद भी जताई।
हाँ, अंत तक वो आशावादी रहे।
तो अगर हम उनके मूल दर्शन और मूल्यों को थोड़ा संक्षेप में समझने की कोशिश करें तो क्या मुख्य बातें उभर कर आती हैं? हमने व्यवहारिक शिक्षा, श्रम की गरिमा और आत्मनिर्भरता पर तो बात की है।
हाँ, इनके अलावा उनका क्रमिक प्रगति और नस्लीय समायोजन का विचार बहुत अहम है, हालांकि जैसा हमने कहा विवादास्पद भी है।
क्रमिक प्रगति मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना?
हाँ, उनका मानना था कि शत्रुतापूर्ण माहौल में सीधे टकराव के बजाय धीरे धीरे व्यवहारिक कदमों से आगे बढ़ना ज्यादा सुरक्षित और शायद ज्यादा प्रभावी हो सकता है।
और उनका ये भी मानना था कि अश्वेत समुदाय की प्रगति पूरे देश की प्रगति से जुड़ी हुई है, मतलब सबका हित साझा है।
बिल्कुल, और इन सब के पीछे उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से कहीं ज्यादा अपनी जाति और अपने देश की सेवा करने की एक गहरी भावना थी।
ये वाकई एक बहुत जटिल और बहुस्तरीय व्यक्तित्व था। उनकी कहानी से आज के समय में क्या मानवीय सबक लिए जा सकते हैं, क्या लगता है आपको?
देखिए, सबसे पहला सबक तो है दृढ़ता का। वॉशिंगटन का जीवन ये दिखाता है कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लगातार कोशिश और आत्मसुधार से उन पर विजय पाई जा सकती है।
गुलामी से उठकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना, ये अपने आप में इसका सबसे बड़ा प्रमाण है।
निश्चित रूप से। दूसरा, शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति, चाहे वो एक पुरानी स्पेलिंग बुक से शुरू हुई हो या एक बड़े संस्थान में मिली हो, ज्ञान हासिल करने की इच्छा ही मुक्ति का पहला कदम हो सकती है।
और वो जो हर काम में गरिमा खोजने वाला विचार है, वो भी आज बहुत प्रासंगिक लगता है।
हाँ, बिल्कुल। झाड़ू परीक्षण से लेकर टस्केगी में ईंटें बनाने तक वॉशिंगटन ने दिखाया कि उत्कृष्टता किसी पद या काम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, वो करने वाले के चरित्र और लगन पर निर्भर करती है।
और उनका वो सिद्धांत, अपनी बाल्टी वहीं डालो, वो भी हमें याद दिलाता है कि बड़े बदलावों की शुरुआत अक्सर छोटी व्यावहारिक पहलों से होती है।
हाँ, और ये हमें नेतृत्व की जटिलताओं पर भी सोचने को मजबूर करता है ना, कि दमनकारी व्यवस्थाओं में रहते हुए सही रास्ता चुनना कितना मुश्किल होता है।
बिल्कुल, क्या तात्कालिक टकराव बेहतर है या फिर रणनीतिक धैर्य?
ये सवाल हमेशा रहते हैं। वॉशिंगटन की रणनीतियों पर बहस आज भी जारी है, जो दिखाती है कि ये सवाल कितने स्थायी हैं। उनकी कहानी हमें चरित्र, अनुशासन और आत्मनिर्भरता के महत्व के बारे में तो बताती ही है, साथ ही मुश्किल समय में पुल बनाने और साझा जमीन तलाशने की प्रासंगिकता पर भी सोचने को कहती है, भले ही वो रास्ता विवादास्पद क्यों ना हो।
ये वास्तव में आशा, महत्वाकांक्षा, सेवा और सबसे बढ़कर मानवीय लचीलेपन, रेजिलियंस की कहानी है।
बिल्कुल।
तो इस पूरी चर्चा के अंत में अगर हमें तीन मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? सबसे पहले एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि।
बिल्कुल। और दूसरी एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि।
वो ये कि सामाजिक परिवर्तन के लिए वॉशिंगटन का जो दृष्टिकोण था, यानी आर्थिक सशक्तिकरण के जरिए धीरे धीरे प्रगति करना, वो सिर्फ परिस्थितियों से कोई समझौता नहीं था,
बल्कि
ये उस हिंसक और दमनकारी दौर में एक बेहद जोखिम भरी पर बहुत सोची समझी रणनीतिक चाल थी। ये सत्ता की गतिशीलता और सामाजिक न्याय हासिल करने के अलग अलग जटिल रास्तों की एक व्यवहारिक समझ को दर्शाता है। अटलांटा समझौता एक रणनीति थी, हार नहीं।
ये एक अहम नुक्ता है। और अंत में एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। वो शायद वॉशिंगटन का ही एक कथन है कि सफलता को जीवन में प्राप्त पद से नहीं मापा जाना चाहिए, बल्कि उन बाधाओं से मापा जाना चाहिए जिन्हें पार किया गया है।
वाह।
और ये कि किसी भी काम में उत्कृष्टता, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, वो न केवल चरित्र का निर्माण करती है बल्कि सम्मान भी दिलाती है।
झाड़ू परीक्षण से लेकर टस्किगी के निर्माण तक उनका पूरा जीवन इसी सिद्धांत का प्रमाण है।
बुकर टी वॉशिंगटन की विरासत, जैसा हमने कहा, जटिल है और उस पर आज भी बहस होती है कि मुश्किल हालात में परिस्थितियों से कितना समझौता करना जरूरी है और कब अपने अधिकारों के लिए सीधी लड़ाई ही एकमात्र रास्ता बचता है।
हाँ, ये सवाल शायद हमेशा प्रासंगिक रहेगा और इस पर सोचते रहना जरूरी है।
निश्चित रूप से ये सोचने वाली बात है, खासकर आज के दौर में भी।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।